का साज आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी, आपके फैमिली डेंटिस्ट। 9054578661।
एशियन फूड सेंटर, इंडियन, कैनेडियन, साफ सुथरी ग्रोसरी देनाल।
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है।
अपने एरिया विच पेंदे किसी भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे।
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इको एक नंबर याद रखो, 416-740-3262।
एशियन फूड सेंटर, 416-740-3262।
कैनेडियन इमिग्रेशन के कवानीन वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आपकी इमिग्रेशन का केस माहिराना तरीके से अप्लाई किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और हमारी फर्म हर तरह के केसेस, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या बिजनेस क्लास, फैमिली क्लास, स्पॉन्सरशिप हो या विजिटर वीजा, कामयाब तरीके से सबमिट करती है। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हमारे लॉ ऑफिस में ऑसबर्न बार्नवेल बैरिस्टर एंड सोलिसिटर हैं, जो डिपोर्टेशन रुकवाने और कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के पेचीदा केसेस करने में 25 साल तजर्बा रखते हैं। आप मुझसे 9055130012 पर रब्ता कर सकते हैं।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 Melville Drive, Etobicoke, टेलीफोन 416-747-6800।
मेसमराइज ऑप्टिकल, दूर या करीब की नजर कमजोर है, दुनिया के खूबसूरत रंगों को देखना, लिखना, पढ़ना, अपने बच्चों की पोरों, उनके बालों, उनके चेहरे को एंजॉय करना, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, बच्चों के लिए एचडी डिजिटल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, फ्री बाईफोकल प्रोग्रेसिव लेंसेज, फ्री ट्रांजिशन एसवी लेंसेज, 50% तक ऑफ। मेसमराइज ऑप्टिकल तमाम इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। 1780 Markham Road, यूनिट B2, स्कारब्रो में, शॉपर्स ड्रग मार्ट वाले प्लाजा में। मेसमराइज ऑप्टिकल, अपनी नजर चेक करवाइए। 416-335-0786
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं। बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन नाउ 6472281000, Harry Sond of Majestic Mortgages।
रूबी ज्वेलर्स, खुशी के मौके पर गोल्ड और डायमंड की खरीदो फरोख्त में। 28 साल से रूबी ज्वेलर्स आपके फैमिली ज्वेलर्स। डायमंड इयर रिंग्स, बैंगल्स, डायमंड रिंग्स इन प्लैटिनम। साइज लेने से मेकिंग और डिलीवरी तक आपकी सेटिस्फेक्शन की गारंटी। पाकिस्तान, दुबई, सिंगापुर, इंडिया। दिलकश डिजाइन, कंगना, बिंदिया, झूमर। 7080 Airport Road, रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी में क्वालिटी के जामिन रूबी ज्वेलर्स। 9056776888 रूबी ज्वेलर्स।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम। 416-302-2522, 302-2522।
हेरा ट्रैवल, दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करना हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तमाम एयरलाइंस से डील करते हैं। IATA अप्रूव्ड, टोरंटो की सबसे पुरानी और काबिल एतमाद ट्रैवल एजेंसी। सस्ते और पक्के टिकट के लिए सफरी सहूलतों की यकीन दहानी, प्रोफेशनल सर्विस। हेरा ट्रैवल किसी भी रिटर्न प्राइस को बीट करेंगे। 416-255-5566, 416-255-5566, हेरा ट्रैवल।
All that solutions and consulting services. 416-671-0577. Financial problems? Stop worrying and start living. Debt-free life. Visit today to your convenient location. Toronto, Scarborough, Richmond Hills and Mississauga. Call now 416-671-0577. Live a happy debt-free life. All debt solutions and consulting services.
जी साहब, एक इदारती सफ़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बड़ा प्यारा सा एक कॉलम मुझे लगा. मैंने कहा मैं आपके साथ, ये शोबदाबाज आज भी हैं, ये शोबदाबाज कल भी थे और ये कल रहेंगे भी, यानी थे, हैं और होंगे. टोरंटो आप इमेजिन कीजिए, दिस इज़ 21st century और हर चीज़ का जवाब आपको इंटरनेट पे मिलता है. आप बहुत सारी चीज़ों, बल्कि आप इवन एप्पल पे जाके खड़े हो जाएं और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो एप्पल के एम्प्लॉय भी जो हैं वो गूगल पे जाके उस सवाल का जवाब हासिल करते हैं. मगर साहब, आज की दुनिया में भी अभी बल्कि परसों का ही मैं प्रोग्राम सुन रही थी, 2 से 3 बजे का प्रोग्राम जिसको चरणजीत बरार पेश कर रहे थे और उनके साथ सिद्धू साहब भी बल्कि आए, तो वो भी टोरंटो में शोबदाबाजों का जिक्र कर रहे थे, वो जो झांसे देते हैं. बल्कि उन्होंने एक वाक़े का इजहार भी किया. ये वाक़ा वैनकूवर का है कि खातून एक वॉक करने के लिए गई तो उनको एक इश्तहार नज़र आया. इश्तहार था कि $5 में हाथ दिखाइए. खातून $5 में हाथ दिखाने चली गई. उस बंदे ने हाथ देखा और उसने उनको बताया कि उस पर तो कोई साया है और ये कुछ है. मैंने कहा जी तुम ऐसा करो, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा चिल्ला काटता हूँ. उसके उसने उनको शायद 22 या 27 या $37 बताए. खातून उनके घर चली गई बिकॉज इट वॉज विद इन हर अफोर्डेबिलिटी एंड विद इन हर रेंज. जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने बताया कि तुम पे तो बहुत बड़ा आसेब हो गया. जब आसेब होने का कहा उन्होंने, तो उसके बाद खातून को कहा गया कि तुम $1600 का इंतज़ाम करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक चिला करूँगा. $1600 का उस औरत ने इंतज़ाम कर लिया ऐसे कैसे. जब उसका चिला किया और उसके बाद जो शोबदाबाज था उसने ये कहा कि बीबी ऐसा है कि तुम्हारा चिला काटते काटते वो आसेब मेरी बीवी के ऊपर आ गया और तुम्हारे पे तो शहीदों का साया है और तुम ऐसा करो $32,000 इसका तो लगेगा और हमें अकील भाई बहुत खूबसूरत आपका पैगाम आया. तो वो कहते हैं कि खातून को जब $32,000 नाम लेने की बात है तो ये एक एथियस्ट की एक प्रेसिडेंट हैं वैनकूवर के ही, तो खातून को कहीं से उनका नंबर मिल गया. उन्होंने अपनी पूरी बिपता उनको सुनाई तो उन्होंने कहा अच्छा बीबी, अच्छा हुआ बीबी तुम्हारा वक्त पे तुमने हमें कॉल कर लिया, ऐसा है कि हम तुम्हारा $1600 तुम्हें वापस लेके दे देते हैं. खैर वो आदमी ने खातून को बहुत कॉल एक दफ़ा, बिकॉज शी वॉज़ वेरी एग्रेसिव. $5 दिए, $1600 दिए एंड उनको जो जिस खौफ में मुब्तला कर दिया गया था, शी वॉज रेडी टू अरेंज $32,000. खातून ने जब इस थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, जो कि वेरी नोन पीपल हैं वहीं वैनकूवर के, उन्होंने पहले भी कुछ लोगों को इस चुंगल से आज़ाद दिल करवाया हुआ है. खैर उन्होंने उसे कहा कि तुम उसको डिले करो, डिले हिम टिल फ्राइडे. मगर वो आदमी, क्योंकि उसको भी पता था कि खातून फंस चुकी है, बार बार कॉल करता था. अल्टीमेटली उसने कहा कि तुम्हारे पास जितने पैसे रहे, इसने कहा मैंने अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट या पता नहीं कोई लोन अप्लाई किया हुआ है तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए $32,000 ले आऊँगी, तुम मेरा इलाज करना. एनीवेज उसने कहा कि नहीं, इस वक्त तुम्हारे पास जितने हैं ये इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, यानी इसको क्योर, इसकी इमीडिएटली क्योर ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरी बीवी के ऊपर भी इसका असर आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को काट रहा था, प्रॉब्लम मेरे घर भी आ गई है. 32,000 तुम लेके आओ. उसने कहा जितने भी पैसे तुम्हारे पास है, मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस खातून ने इन बंदों से रब्ता किया, उन्होंने कहा तुमको मेरे पास 3,000 अरेंज हो गया. खैर उसने कहा तुम फिलहाल 3,000 ही लेके आ जाओ, बाकी पैसे हम बाद में देख लेंगे. खैर खातून ने इनको कॉल किया, इन्होंने दो बंदे अपने साथ रवाना किए और ये खातून उस बंदे के पास चली गई. जब वो अपना उपाय करने लगा तो इन्होंने वीडियोस बनाई. वो बंदा इन लोगों को, ये जो लोग
उनके साथ गए,
सेवियर्स इनके साथ गए थे खातून के, वो शायद इनको जानता भी था. खैर कहते हैं वो इनके पाँव पड़ा, उसने कहा कि तुम $1600 भी वापस दे लो और मैं, कहते हैं उस वक्त उसके पास सिर्फ $500 थे, तो तुम प्लीज़ मेरी वीडियो ना बनाओ और मुझे छोड़ दो, मैं पीछे हटता हूँ. खैर उसने बैंक जाने का कहा, मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन्होंने कहा कि नहीं हम तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। उसकी बीवी भी रोने लग गई, ये भी रोने लग गया, इनका बंदा साथ गया, उसने बाकी $1,100 बैंक से निकलवाए, इस औरत के 1600, यानी शोबदाबाजों की हम बात कर रहे थे। तो एक ये इदारती सफ़ा मेरी नज़र से गुजरा, ये भी लाहौर का शोबदाबाज पीर और शेख अब्दुल्ला की शादी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि 1926, 1927, 1930, 1932, 1935, 1942, 1940, 1942, 1945, यानी दुनिया में आग लगी हुई थी, मगर आप इमेजिन करें पीरों फकीरों का काम भी चल रहा था। 1926 के लगभग लाहौर में एक शोबदाबाज पीर हुआ करता था जिसका नाम पीर करम शाह था। वो हज़ारा का रहने वाला था। ख्वाजा अजमेर के मज़ार पर कुछ अरसा चिला कशी भी इसने की थी। उस ज़माने में यानी 1926 में कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया का हिंदुस्तान में बड़ा चर्चा था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की आपने फिल्म भी देखी होगी, बल्कि आप सोचिएगा कि सऊदी अरेबिया का जब इन्होंने दौरा किया था उसके बाद सऊदी अरेबिया यानी उस इलाके का भी पानसा ही पलट के रख दिया। आपको बताइए कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया आप फिल्म देख लीजिएगा। अजब इत्तेफाक है, पीर करम शाह की शक्ल कर्नल लॉरेंस से बहुत मिलती थी। करम शाह ने पीरी मुरीदी का कारोबार बड़ा चला रखा था। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत इंसान था, बहुत खूबसूरत आदमी था, औरतें इसकी गर्विदा होने लगी और जो पीर साहब थे पीर करम शाह, इसका कारोबार बड़ा चल निकला। लाहौर में ज़ाहिर 1926 की बात है, हिंदू भी थे सिख भी थे, बहुत से लोग थे। लाहौर के पुराने हिंदू रऊसा जो अमीर हिंदू थे उनमें राय बहादुर मेला राम एक थे जो कि पंजाब के बहुत बड़े ठेकेदार थे। लाहौर में उनकी बहुत सारी कोठियां थी। हज़रत दाता गंज बख्श साहब हजवेरी के मज़ार के करीब लाल कोठी में ये राय बहादुर मेला राम रहा करते होते थे। ठेकेदारी में लाखों इन्होंने कमाए, ये 1926 की बात है। उन्होंने 1890 के लगभग एक कुआं माँ ज़मीन 5,000 रुपये में ख़रीदा। ये ज़मीन मलका के बुत से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक चली गई। राय साहब ने ज़मीन के एक हिस्से पर तो चेरिंग क्रॉस की शानदार इमारत बनवाई जो आज भी चेरिंग क्रॉस की इमारत है, दूसरे हिस्से पर एक होटल तामीर कराया जिसका नाम नेहरू होटल था। यानी राय बहादुर मेलाराम बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा अमीर आदमी था, और एक हिस्से पे इसने चेरिंग क्रॉस तब तामीर करवाया था, दूसरे हिस्से के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर नेहरू होटल बनाया था। एक अंग्रेज़ मिस्टर नेहरू ने इस होटल को एक लंबी मियाद पर पूरे के पूरे होटल को किराए पर ले लिया था। आजकल वही जहाँ पे नेहरू होटल था आजकल अवारी होटल यहाँ मौजूद है। मिस्टर नेहरू जो कि अंग्रेज़ थे, पुराने वक्तों में नेक दिल के अंग्रेज़ थे, इनके तीन बेटे थे जो बहुत खूबसूरत थे, ज़ारा गोरे थे। इनमें से एक बेटे का नाम हैरी नेहरू था और ये हैरी गर्मियों में गुलबर्ग में रहा करता था और सर्दियों में लाहौर वाले होटल में काम संभालता था, यानी नेहरू होटल का काम संभालता था। बड़ा खूबसूरत था, मुनकसरुल मिजाज था। हैरी एक कश्मीरी दोशीज़ा का पे आशिक हो गया। वालदेन की मुखालफत के बावजूद हैरी नेहरू ने इस कश्मीरी लड़की से शादी कर ली। हैरी नेहरू ने न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इस कश्मीरी लड़की, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं इश्क, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, छोटी सी दाढ़ी भी रख ली। हैरी नेहरू के हाँ इस कश्मीरी बीवी से एक बेटी पैदा हुई जो चंदे आफ्ताब चंदे, ऑफकोर्स कश्मीरी लड़की की बेटी थी, गोरा बाप था। इस बच्ची की तालीम श्रीनगर के कॉन्वेंट स्कूल में होती रही। पढ़ लिख कर वो लड़की बड़ी रोशन ख्याल और शाइस्ता बन गई। करम शाह, पीर करम शाह जिसका मैं बात कर रही हूँ कि लाहौर का एक पीर था, हज़ारा से इसका ताल्लुक था, इसके पास दौलत की फरावानी तो थी, कश्मीर में भी अपनी पीरी मुरीदी का खूब जाल इसने फैलाया हुआ था। पीर करम शाह की ज़ाहरी सजधज और हुसन खुदा ने कश्मीर में खूब असर पैदा किया और कश्मीर के लोग धड़ाधड़ इसके मुरीद होने लगे। अब हैरी नेहरू की मुलाकात भी एक महफिल में पीर करम शाह से हो गई। दो चार मुलाकातों के बाद हैरी नेहरू भी पीर करम शाह का गर्विदा हो गया। इसको मर्द कामिल समझने लगा कि ना देर इज नो मैच पे, जो पीर करम शाह है ये तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू बंदा है। हैरी नेहरू ने इरादा कर लिया कि अपनी बेटी का रिश्ता करम शाह से करेगा। यंग आदमी था, खूबसूरत था। इसकी शादी की वजह से करम शाह की शोहरत को چار چاند لگ گئے. یعنی انگریز کا بیٹا, کشمیری اس کی بیوی تھی, مسلمان ہوا تھا, کنورٹی ریورٹی تھا. ظاہر ہے اس کی شادی کو ایک کرامت سمجھا جانے لگا. شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو اس کی حالت درست رہی. اس نے اپنی بیوی کی خاطر مدارت پہ کوئی کسر نہ چھوڑی. صحت جوانی کو قائم رکھنے کے لیے ایک حکیم صاحب ان کی گولیاں استعمال کرتے تھے. ان گولیوں کی اجزاء دہلی اور لکھنؤ سے لایا جاتے تھے. پیر کرم شاہ آہستہ آہستہ بے باک ہونے لگے. پہلے تو اپنے گھر میں خرابات سے باز رہتا تھا, لیکن اب وہ اپنے گھر میں, آپ کو جیسے ہم نے پہلے کہا جب یہ لاہور میں بھی ہوتے تھے, خوبصورت آدمی تھا, عورتیں اس پہ بہت تھیں اور یہیں سے اس نے پیسہ بھی کمایا. اب اس نے کیا کیا کہ جب اس نے شادی کر لی اس ہیری نیڈو کی بیٹی سے, تو اس کے بعد کچھ عرصہ تو صحیح رہا, اس کے بعد پھر اس نے بعد میں اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا, عورتوں سے میل ملاپ رکھنے لگا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیگم سے تعلقات, یعنی ہیری نیڈو اور ان کی بیٹی سے اس کے تعلقات تھوڑے خراب ہونے لگے. بڑھتے بڑھتے حالت یہ ہوئی کہ بیگم سے تلخ کلامی کے علاوہ دھول دھپا بھی شروع ہو گیا. رائٹر لکھتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہمارے دوست, اور یہ جس رائٹر کو بھی میں آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرتی چلوں, ڈاکٹر صفدر محمود ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں میاں علیم الدین دیر سے سیکرٹریٹ پہنچے. جب ہم نے میاں علیم سے سبب پوچھا کہ بھائی دیر کیوں ہو گئی, تو انہوں نے پتہ چلا کہ وہ جب دفتر آنے لگے تو پیر کرم شاہ کی بیگم ایک کھڑکی میں کھڑی زار زار رو رہی تھی. اب یہ پیر کرم شاہ کی بیوی, آپ کو میں نے بتایا کہ ہیری نیڈو اس سے بڑا امپریس تھا, اس نے اپنی بیٹی جو کہ بڑی پڑھی لکھی لڑکی تھی, اس کو بہت اچھے طریقے میں وہیں کے کشمیر میں ہی ایک کانوینٹ اسکول میں اس نے پڑھایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میاں علیم الدین کہتے ہیں کہ جب میں دفتر کی طرف آ رہا تھا تو پیر کرم شاہ کی بیگم لاہور میں کھڑکی میں کھڑی زار زار رو رہی تھی, ہاتھ باندھ کر التجا کرنے لگی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کمرے سے نکال دو. اب صاحب یہ جو رائٹر ہیں کہتے ہیں کہ اپنے دوست میاں علیم الدین دیر, میں اور ہمارے دو اور دوست, ہم چار دوست نہ پیر کرم شاہ کے گھر پہنچے. جب ہم پیر کرم شاہ کے گھر گئے, اب پیر تھے وہ, تعویز گنڈا کرتے تھے جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے چلا بھی کاٹا ہوا تھا. پیر کرم شاہ اپنے گھر میں نشے میں دھت قالین پر لیٹے ہوئے تھے. اب جب ہم چار دوست اور ایک سپاہی کو جب پیر صاحب نے دیکھا تو کچھ گھبرا گئے. پوچھا یہ شخص کیسے آیا ہے. رائٹر کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ تم نے جو اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند رکھا ہے, اسے مارا ہے, اس کی اطلاع پولیس والوں کو ہو گئی ہے اور پولیس تمہاری گرفتاری کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ آغا صاحب نے ایک ایسا سخت گھونسا رسید کیا, یعنی پیر صاحب کو چکر مکہ مار دیا, ان کا سر چکرا گیا اور وہ قالین پر لیٹ گئے. دوسرے ساتھی علیم نے ایک چھرا نکال لیا, تیسرے دوست منوہر لال نے ایک ٹومی پستول نکال لیا اور پیر صاحب کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ذرا بھی آواز نکالی تو اس کو مار دیں گے. اب صاحب پیر کرم شاہ کہاں کے نشے میں دھت قالین پر لیٹے ہوئے تھے. پیر صاحب نے جب ٹومی پستول دیکھا, چھرا دیکھا, ایک مکہ ان کے سر پہ پڑا, تو ان کا تو نشہ تو ہو گیا ہرن. ہاتھ باندھ کر پوچھا آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. رائٹر کہتے ہیں آغا صاحب نے کہا کہ پہلے اپنی بیوی کو کھوٹڑی سے نکالو. پیر کرم شاہ نے اپنی جیب سے چابی نکالی, تالا کھولا, بیوی کو باہر لے آیا. دو دن کے اس عورت نے جو اس کی بیوی تھی, ہیری نیڈو کی جو بیوی تھی, بیٹی تھی ہیری نیڈو نے اس پیر صاحب سے متاثر ہو کے اس سے شادی کی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے اس عورت کو دو دن سے کھانا نہیں دیا ہوا تھا اور کمرے میں بند کیا ہوا تھا. عورت کا برا حال تھا. یہ چاروں دوست کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک پولیس آفیسر تھا, ہم نے اسے کچھ شربت پلایا, اس کے ہوش بحال ہوئے. پھر خاتون نے اس جالساز کی ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ سب کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آخر میں اس عورت نے منت کی کہ مجھے اس پیر کرم شاہ سے طلاق دلوا دو. صاحب وہ کہتے ہیں ہم کیوں پانچ لوگ وہاں موجود تھے. پیر کرم شاہ کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ مجھے واقعی, کیونکہ ظاہر ہے ایک پستول تھا, ایک چھرا تھا, ایک بندے دو مکے لے کے کھڑے ہوئے تھے, پولیس والا کھڑا ہوا تھا. پیر کو تو یقین ہو گیا کہ اب مجھے جان سے مار دیں گے. تو پیر صاحب زار زار رونے لگے, ہاتھ باندھ کر کہنے لگے خدا کے واسطے میری جان بخش دو. खैर ये चारों दोस्त कहते हैं कि आखिरी बार हमने समझाया कि अपनी बीवी को फौरन से पहले तलाक दे दो, तो जो पीर करम शाह था वो तो कांपने लगा। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर उसने तलाक देने पर आमादगी जाहिर की और फिर पीर करम शाह ने 3 बार तलाक का कलमा पढ़कर ऐलान कर दिया। और पीर साहब तो 3 दफ़ा तलाक 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 कह के उठ के दूसरे कमरे में चले गए और बीवी के जेवरात की संदूक चूठा लाए, उसे अपने बीवी के हवाले कर दिया, 3-4 हज़ार रुपये नकद भी दे दिए। खातून दूसरे दिन कश्मीर रवाना हो गई, ये मामला बखूबी तय पा गया। और राइटर कहते हैं कि हमने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। कारीन, ये खातून वही है जो मैं बाद में साबिक वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला मरहूम की बीवी बनी थी, यानी पीर करम शाह से इसकी फिर डाइवोर्स करवाते हैं ये, फिर ये कश्मीर चली जाती हैं एंड लेटर ऑन शेख अब्दुल्ला जिनकी डेथ हो गई है उनकी ये बीवी बनी थी। आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में जो जुलूस कहते हैं श्रीनगर से निकाला गया था, इसकी क़यादत ये खातून करती होती थी। सही मानों में शेख साहब की रफीका हयात साबित हुई। ये कॉलम जो था ये था डॉक्टर सफदर महमूद का और इसको इस हिस्से को लिया गया था सब्ज़ा बेगाना अज शेख अब्दुशकूर मरहूम से, इसको माखूज किया गया था। आई होप यू लाइक्ड इट,
वेरी इंटरेस्टिंग।
अजय भाई, मुझे आपकी किसी बात का यकीन नहीं आता, यू रियली मीन इट और नॉट?
नो, आई रियली मीन इट। मगर ये जो बाबों की कहानी जो है ना, ये अरफा जी, ईमान की कमी होती है और कुछ नहीं है। चाहे आपका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक हो, जब ईमान की कमी होती है ना, तो उस वक्त ये सारे बाबे और ये सब आपको याद आते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं आप लोग, मगर मजबूरी में फिर लोग हर काम क्या करते हैं।
ये माजिद भाई डराने की एक पॉलिसी, आप किसी को इतना डरा दें कि उसके दिमाग को उसके अपने अपने कंट्रोल में ले लें। आई थिंक ये जो बाबों की कहानी है ये डराने की नहीं, डराने की कहानी,
डराने की, ऑफकोर्स डराने की।
एनी वेज, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजाला जैद, हमारी स्पॉन्सर हैं इस कॉलम की, स्पॉन्सर हैं डॉक्टर गजाला जैद कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के लिए, या आपकी अर्जेंट डेंटिस्ट्री की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चार्जेस ऑफ कोर्स यू गिव द रेफरेंस ऑफ साज आवाज, आई गारंटी यू शी विल चार्ज यू बहुत रीजनेबल चार्ज करेंगी। डॉक्टर गजाला जैद स्कारब्रो में हैं। अकील भाई कहते हैं आई डिसएग्री
विद हु, विद यू और विद मी?
विद यू, विद माजिद भाई,
विद माजिद भाई,
यस विद माजिद।
फॉर व्हाट?
गजाला जैद का मैं नंबर दे दूं आप कि अगर दांतों में दर्द है, क्राउन्स हैं, कैविटी हैं, ब्रेसेस बच्चों के लिए हैं, बच्चों के दांत बैलेंस नहीं हैं, तो 416-945-1000। आपको पता होगा कि बच्चों की एक इंश्योरेंस भी होती है जो कि 18 साल की उम्र तक उनको कवर करती है। इवन जो बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी एक डेंटल इंश्योरेंस होती है जो उनको कवर करती है। डॉक्टर गजाला जैद का नंबर 416-945-1000 एंड शाहीन टिक्का एंड कबाब का भी जिक्र करना चाहती हूँ, लजीज जायकेदार खाने के लिए शाहीन टिक्का एंड कबाब 747 डॉन मिल्स के ऊपर 2 ब्लॉक्स साउथ ऑफ ऑन्टेरियो साइंस सेंटर 416-696-7535। जी
एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, इसकी बात सुन लें क्या क्या कहना चाहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम माचे भाई, मैं वजीहा बात कर रही हूँ, अरफा जी से बात हो सकती है?
वजीहा बेटा, हम आपके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला हर हर एक के नसीब में करे उस जगह पे पहुँचना।
मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अभी आपकी ये मैं स्टोरी सुन रही थी तो आप उसके आखिर में जब माजिद भाई ने कहा कि बहुत खूब, तो आपने कहा मैं माजिद भाई आपकी बात का कोई इतना वो नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती, आप रियली कह रही है, तो ऐसा ही हमारे साथ भी है, हम भी कॉलर्स हैं तो हमारा भी यही हाल है माजिद भाई के साथ।
मैंने आपके पैसे देने
माजिद भाई, मैं आपको तब तक ही वाकई आप मैं आपको बताती हूँ, आप मजा जानते हैं, मैं गलत नहीं कहती,
मैं तो कभी इनसे मुलाकात भी नहीं हुई है।
दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो एब्रप्ट लोग होते हैं जो दिल में आया कह दिया।
پوری بات بتا دیتی ہوں. آپ ادھر گئی تھی حج پہ تو میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے آرفا بادی کی آواز نہیں آئی, تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں فائر کر دیا.
اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہے.
اور جب میں نے کہ نہیں میں مزاق کر رہا ہوں, وہ ہسبینڈ ہوگی, کہ میں تھا جب وہ میں بات کروں گی ان سے تو کہتے ہیں کہ آپ کو چگلی لگانے کی بڑی عادت ہے. مطلب یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مرضی کہیں.
بڑی پیاری آپ نے بات کہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, ماجد بھائی کو میں نے ابھی اس لیے کہا کہ ماجد بھائی مجھے یقین نہیں آیا آپ کی بات کا, کیونکہ ماجد بھائی نا دیر آر ٹائمس کے مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہہ دیں, صحیح کو صحیح کہہ دیں. ماجد بھائی ٹیکنیکلی ڈیل کرتے ہیں, یہ ہم دل والے لوگ ہیں, یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں.
میں نے ضرور ان کے پیسے دینے, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
دیٹ از اے گڈ ون.
میں نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں فرمائش پوری کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے آپ نہیں ہوتی تو یہ بڑے شیر ہو جاتے, انہوں نے ریم شاہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ کے لگائے وہ کہہ کے دو گھنٹے
نیچے میرے کہہ کے بھی ان کو پسند نہیں ہے. میں نے ضرور ان کے پیسے دینے ہیں وجیہ بہن کے, میں لے کے آ رہا ہوں جی, آپ مجھے بتا دیں کتنے ہیں.
وجیہ آئی لو یو. زندگی میں دو چیزیں, ایک انسان کو نہ کہنا آئے تو آپ سٹریس کم ہو سکتی ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کیوں جھوٹ بولا جائے, تو آپ اس کو اچھا کہیں, دل کھل کے اچھا کہیں. اگر کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے تو دل کھول کے اس کو کہیں آپ کہ بھائی ہاں بھائی ایسا نہیں, میرا خیال کے مطابق ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے.
جی ہلو, السلام علیکم. جی ہلو, جی
ہلو,
ہاں جی, ہاں جی
جی السلام علیکم. عظمت صدیق بول رہا ہوں آصف آبادی سے, آف ایئر بات ہو سکتی ہے؟
عظمت بھائی آپ ہولڈ کیجئے گا, آپ ہولڈ کیجئے گا. آج نا ہمارا ٹیلیفون ہمیں داغ مفارقت دیا ہوا ہے, مگر کرتے ہیں.
کیا کر دیا؟
داغ مفارقت دے رہا ہے.
دار مفارقت,
داغ مفارقت,
داغ مفارقت,
جدائی ملنے لگی ہے اس سے.
اچھا
میں نے ایک ترانہ نکالا ہے آپ کے لیے, میں آصف رضا صاحب نے اس ترانے کو لگایا, اینڈ آئی ایم پروبیبلی, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں میں دل والی ہوں. مجھے 71 کا, آئی واز اے اسٹوڈنٹ دیٹ ٹائم, چھوٹی کلاسز میں تھے ہم, آپ امیجن کر سکتے ہیں, آئی تھنک سو 71 میں کون سا گریڈ ہوگا, آئی ڈونٹ ریممبر. وار ہوئی نا تو پاکستان لاسٹ ویسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان, اور مجھے یاد ہے کہ میری امی دو دن بستر سے اٹھ نہیں سکی تھیں, انہوں نے تکیے میں سر رکھ کے, میری امی جان اللہ ان کے جنت الفردوس میں جگہ کرے, تو امی جان بستر سے نکلے, تو ہم جوانی کا زور بھی انسان کا عجیب و غریب ہوتا, تو ہم کہتے تھے امی اٹس اوکے, ہیپن از ہیپن, جو ہونا تھا ہو گیا, تو مطلب اٹس اوکے. مگر مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو ہم نے ویسٹ ایسٹ پاکستان کے لیے روتے ہوئے دیکھا, آنسوؤں کے ساتھ زار زار, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ضرور. اور مجھے یاد ہے شی کڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف دا بیڈ فار 2.5 days. تو آج میں بیٹھی ہوئی ساتھ والے کمرے میں, آصف رضا صاحب نے یہ ترانہ لگایا, اور پریکٹیکلی دل رویا اس کو سن کے. اللہ کرے کہ ہم اس وطن عزیز کو سنبھال کے رکھ سکیں. بائی دی وے مصطفیٰ کمال نے آج ایک بیان دیا ہے کہ نریندر مودی تھینک یو ویری مچ, تمہاری ایک کام سے ایٹ لیسٹ پاکستانی قوم متحد ضرور ہوئی ہے. اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے سماعت.
سبھی الٹ گئے, कौन हर बला को टाल के बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे चलना है मगर तुमको तो पुरा के सहारे दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे चलना है मगर तुमको तो पुरा के सहारे हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के तुम राह तो आराम के झूले में न झूलो कांटों पे है चलना मेरे हंसे हुए फूलो लेना अभी कश्मीर है ये बात न भूलो लेना अभी कश्मीर है ये बात न भूलो ये बात न भूलो कश्मीर पे लहराना है झंडा उछाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के
डोंट वरी हुण कम आउणगे वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विस दे मिस्टर आरएस वालिया केयरलेस ड्राइविंग सीट बेल्ट ड्रंक ड्राइव या फिर रेड लाइट ट्रैफिक दी किसी भी उल्लंघना विच फस गए हो तो मिस्टर आरएस वालिया
सारे सदरन ओंटारियो विच सेवावां लई
कॉर्नर ऑफ स्टील्स एंड कैनेडी इन ब्रैम्पटन नवे बने प्लाजा दे विच
9054542112
9054541212 आरएस वालिया
Dr. Padmaja, family in cosmetic dentistry, experienced and caring dentist, Dr. Padmaja. दांत निकलवाना हो, crown hemorrhages हैं, filling या फिर root canal, तमाम insurance plans को accept करती हैं, आसान weekend या फिर शाम की appointment. Seniors के लिए discount, get the smile you have always dreamed of. In Scarborough, Dr. Padmaja, 416-299-7466, 299-7466, Dr. Padmaja, your dentist.
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेज के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Mohammed Sadiq All Debt Solutions Certified Credit Counselor Free Debt Assessment Consumer Proposal Debt Settlement Reduce or Eliminate Interest Charges from your credit cards Pay your debt with one affordable monthly payment Stop collection call Avoid bankruptcy Start saving for your future Mohammed Sadiq Certified Credit Counselor 416-671-0577 671-0577
Ruby Jewelers खुशी के मौके पर गोल्ड और डायमंड की खरीदो फरोख्त में 28 साल से Ruby Jewelers आपके फैमिली ज्वेलर्स डायमंड इयररिंग्स बैंगल्स डायमंड रिंग्स इन प्लैटिनम साइज लेने से मेकिंग और डिलीवरी तक आपकी सेटिस्फेक्शन की गारंटी पाकिस्तान दुबई सिंगापुर इंडिया दिलकश डिजाइन कंगना बिंदिया झूमर 7080 एयरपोर्ट रोड Ruby Jewelers गोल्ड या डायमंड की खरीदारी में क्वालिटी के जामिन Ruby Jewelers 905-677-6888 Ruby Jewelers
Asian Food Center 905-793-1338 आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले Fruits and vegetables, groceries and staples, bread, dairy and egg, beverage and confectionery, branded foods, personal care and household, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup 905-793-1338 Asian Food Center Asian Food Center
लीजिए साहब एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती चलूँ बहुत शुक्रिया अजमत भाई आपकी कॉल का वो कहते हैं ना कि बहरहाल मैं तो एक बड़ी प्यारी चीज़ मैंने आपके लिए पेश करनी है और ज़ाहिर मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोई चीज़ उस तरह से रिकॉर्ड कर सकूँ तो इसी सफ़र के दौरान एक हम थी मेरी नज़र से गुजरी और मैंने वहाँ पे भी आप तमाम को याद किया था और मैंने सोचा था मैंने टोरंटो जाके सबसे पहले ये रिकॉर्ड करवानी है अपनी आवाज़ में और बहुत खूबसूरत है और कुछ भी नहीं अल्लाह की तारीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी वही है एक और नहीं कोई और खुदा सवाय अल्लाह ताला के वहद ला शरीक है इस पे एक हम्द है आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं अकेली इतनी लंबी नहीं कर सकती आई डोंट नो माजिद भाई मेरे साथ शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे बट आई ट्राई अदरवाइज मैं अकेली कर लूंगी अल्लाह के नामों पर मबनी है ये मगर बहुत खूबसूरत है तो वही मैं कहती हूँ ना कि पांचवा कलमा भी अगर पढ़ें तो पांचवा कलमा भी क्या कहता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा मेरी उन गलतियों को जो मैंने आमदन की वो गलतियाँ जो मैंने सेवन की उन तमाम को मेरी माफ़ कर और मुझे सीधे रास्ते पर रख आमीन सुमामीन एक न्यूज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ कहते हैं पाकिस्तान में अमरीका की साबिक सफ़ीर पाकिस्तान में अमेरिका की साबिक सफ़ीर जो एन पेडरसन है उन्होंने कहा है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म करके हकीकतन कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया है ये जो एन पेडरसन है उन्होंने कहा कि अगरचे ये काफ़ी सख्त अल्फाज दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी या हिंदुस्तान कश्मीर पर काबिज हो गया अमेरिका के जॉन फ्रेडरिक्स रेडियो नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए एन पेडरसन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ये रेडियो पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों जौहरी हथियारों के हामिल मुल्क हैं दोनों मुल्कों में 65-99 में कश्मीर पर जंग हो चुकी है तमाम दुनिया जनूबी एशिया के मसले पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि इसके लिए जनूबी एशिया इतना दूर है कि उन्हें यह मसला ही नहीं लगता मिस पेटरसन ने कहा کہ برے صغیر کی تقسیم کے وقت کشمیریوں میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہونے کے باوجود آئی ڈونٹ نو کشمیر کا بھارت سے الحاق کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا راجہ ایک ہندو تھا. یہ این پیٹرسن نے کہا ہے. این پیٹرسن نے اس ریڈیو انٹرویو پہ کہا کہ کشمیر پاکستانی عوام اور لیڈروں کے لیے ایک جذباتی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے, اور جب وہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں امریکی سفیر کی حیثیت سے تعینات تھی تو اس وقت بھی پاکستانی قیادت کے لیے مسئلہ کشمیر نفسیاتی طور پر انتہائی اہم اور حساس تھا. این پیٹرسن نے کہا کہ اب سے پہلے آخری مرتبہ کشمیر کے معاملے میں سابق صدر مشرف کے دور میں دونوں ملکوں میں بات چیت بھی ہوئی تھی. سفیر این پیٹرسن نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند دہائیوں میں معاشی طور پر بڑی ترقی کی ہے, جبکہ پاکستان اس میدان میں یعنی معاشی ترقی میں پیچھے رہ گیا. امریکہ بھارت کو نہ صرف تجارتی شراکت دار سمجھتا ہے بلکہ خطے میں بڑھتی ہوئی طاقت چین کے خلاف بھارت کے اہم کردار کا خواہش مند بھی ہے. لہذا ماضی میں جب بھی امریکی صدور نے کشمیر کے حوالے سے انڈیا سے بات چیت کرنا چاہی تو بھارتی قیادت کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے امریکی صدور نے گریز کیا. این پیٹرسن کے خیال میں صدر ٹرمپ مصالحت کی پیشکش کے باوجود کشمیر کے معاملے میں خاموش رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. این پیٹرسن کے مطابق بھارتی وزیراعظم نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے لیے وقت کا تعین بہت سوچ سمجھ کر ایسے مواقع پر کیا جب دوحا میں امریکہ اور طالبان کے امن مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس میں پاکستان کا تعاون اور کردار بہت اہم رہا ہے. لہذا ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر سے بہتر ہو رہے ہیں, اگرچہ صدر ٹرمپ کے بارے میں پہلے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی, تاہم وہ کشمیر کے معاملے پر یقیناً خاموش رہنا پسند کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی, کوئی آپ نہیں کہہ رہے. این پیٹرسن جو پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی سفیر تھی, امریکہ کی سفیر ٹو پاکستان, یہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو امریکہ میں ایک انٹرویو دیا ہے. اب صاحب انڈیا یہ کہتا ہے کہ جموں اور کشمیر اس کا ناقابل تنسیق حصہ ہے, ریاست کو آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت خصوصی حیثیت بھارت کے آئین نے دی تھی, اور بھارت کی پارلیمنٹ کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے. چلیے یہ تو تھی ایک صورتحال این پیٹرسن کا انٹرویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز و آواز میں, آپ کے ساتھ عارف مظفر. بائی دا وے جنون گروپ ہمارے ٹورنٹو میں آ رہا ہے, اور یہ جنون گروپ آ رہا ہے 1 November کو. آپ رابطہ کر لیجئے گا, ریحان صاحب سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. جنون گروپ کی اگر آپ ٹکٹس لینا چاہتے ہیں تو ان ٹکٹس کے لیے ریحان کو کال کر لیجئے. میں ریحان کا نمبر دیتی ہوں, ریحان کا نمبر 713-545-4115 713-545-4115 ان کا نمبر ہے. 1 September کو, بالکل صاحب 1 September کو ایک پروگرام ہونا ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ہمارا آج ٹیلی فون ہمیں داغ مفارقت دے رہا ہے, یعنی جدائی اور کچھ بھی نہیں.
مطلب یہ کہاں سے سب سے کہا یہ ورڈ آپ نے, داغ مفارقت؟
داغ مفارقت,
مفارقت
ٹھیک ہے, جدائی کا داغ.
اچھا
چلیے, جب تک میں آپ کو یہاں لے کے جانا چاہتی ہوں, میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں ہارون بھائی سے, کیونکہ صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 1 September کو ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے, 1 September کو, اور یہ پروگرام جو ہے ریکروٹمنٹ کے مطابق ہوگا, جس میں ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ ہوں گے. بیکاز میں ٹیلی فون ملا نہیں سکتی تو ہارون بھائی کو میں اسپیکر پہ رکھتی ہوں اور ہارون بھائی سے بات کرتی ہوں. ہارون بھائی السلام علیکم.
السلام علیکم, آپ کو حج بہت 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 مبارک ہو.
بہت شکریہ ہارون بھائی, میں نے اس وقت جو آپ کو کال کیا 1 September کو, 1 September کو ریکروٹمنٹ کا ایک پروگرام ہے, اینڈ ٹوڈے از 28 تاریخ ہے, 29, 30, 31 اور پہلی تاریخ, تھوڑا بتائیے ہمیں کہاں.
ابھی یہ 21 September کو ہے.
21 September, میں پاگل ہو گئی.
یہ جو ہے,
आप जारी रखिए, बात कीजिए, मैं आपको स्पीकर पे रखा हूँ।
21 सितंबर को लार्जेस्ट एवर रिक्रूटमेंट है कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, जिसमें RCMP, OPP, DTC, कैनेडियन नेवी, आर्मी, मिलिट्री और बाकी सारी पुलिस फोर्सेस हैं इसमें। हॉल्टन पुलिस है, टोरंटो पुलिस है, यॉर्क पुलिस है, डरहम पुलिस है, नाइग्रा पुलिस है, ऑटवा पुलिस है। इस तरह से ये तकरीबन 17 एजेंसीज हैं जो ये रिक्रूटमेंट कर रही हैं साउथ एशियंस के लिए। 659 लिंक रोड जो HMC यॉर्क है, कैनेडियन नेवल हेडक्वार्टर है टोरंटो में, लेक शोर और बाथर्स्ट पर। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पहला मौका है कि इतनी सारी एजेंसीज एक साथ जमा हो रही हैं और ये साउथ एशियंस को ढूंढ रही हैं। इसमें हमारे इंडियन बहन भाई, पाकिस्तानी बहन भाई, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, ईरानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ जाएं और 17 एजेंसीज में भाभी, हर एजेंसी में तकरीबन 40-50 मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, ऑफिस जॉब्स होती हैं, मैकेनिकल जॉब्स होती हैं, इंजीनियरिंग जॉब्स होती हैं। तो ये बेस्ट मौका है अगर लोग वहां जाएं और जाकर अपने आप मालूमात देखें कि उनको RCMP में जाना है, OPP में जाना है, मिलिट्री में जाना है, नेवी में जाना है। तो इससे फायदा होगा कि एक इस कौम की हम खिदमत भी करेंगे जहां हम आए हैं, जिसको हमने अपना घर बनाया, और दूसरे ये बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, पैसे भी इसमें, तनख्वाहें भी अच्छी मिलती हैं। तो ये बात है।
21st को है, कहां पे ये प्रोग्राम है?
659 लेक शोर रोड वेस्ट टोरंटो, HMC यॉर्क, ये बिल्डिंग का नाम है HMC यॉर्क, ये कैनेडियन नेवल हेडक्वार्टर है टोरंटो में।
आप अपना नंबर दीजिएगा, अगर इस सिलसिले में आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप हारून खान से बात कर लीजिएगा। जी हारून भाई,
ये नंबर लिख लें, 416-540-8477
5408477 हारून खान का नंबर है। बहुत शुक्रिया हारून भाई।
अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप ये मैसेज अपने कम्युनिटी के लोगों को पहुंचा रहे हैं।
प्लीज सेंड अस द फ्लायर सो वी कैन पोस्ट इट ऑन आवर अदर क्या कहते हैं आउटलेट्स।
थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर मुर्तजा हैदर, अ वंडरफुल, आई टेक द प्राइड ऑफ डॉक्टर मुर्तजा हैदर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने अभी मुझे किया, डॉक्टर मुर्तजा हैदर यू विल बी विद द जुनून इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल शो दैट इज 1st of November। डॉक्टर साहब की जो नॉलेज है, बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब इंजीनियर हैं, पाकिस्तान में जर्नलिज्म में मोहतरमा मदिहा लोधी के साथ काम किया, अ वेरी टैलेंटेड पर्सन डॉक्टर मुर्तजा हैदर, मैंने हमेशा
फ़ख्र
किया, लर्नड पर्सन, अ लर्नड पर्सन। उन्होंने बताया कि 2 books ऑन कश्मीर, 1 by my mother's mamu, कश्मीर सोल्ड एंड रीसोल्ड, 2nd by JKLF's अमानुल्ला खान, नीड रिव्यूइंग। और अच्छा, डॉक्टर साहब की वालदा के मामू ने एक किताब लिखी थी, कश्मीर सोल्ड एंड रीसोल्ड। डॉक्टर साहब आई रिक्वेस्ट के प्लीज़ इन दिनों ज़ाहिर है वी आर ऑल दुखी भी हैं कश्मीर के हवाले से, और बल्कि अभी जैसे मैं जो मिस पैटरसन है उसके हवाले से बात कर रही थी, ये पाकिस्तान में सफ़ीर थी अमेरिका की, और उन्होंने भी इन अमेरिका के एक रेडियो प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया और कश्मीर के बारे में बातचीत की। जितनी इस हवाले से बातचीत इस वक्त हो रही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कैन बी पार्ट एंड पार्सल, और आपके मुँह से जो बात हम सुनेंगे तो वो यकीनन ज़्यादा मुस्तनद बात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तजा हैदर को, मेरी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर साहब से आपकी बात करा सके इस हवाले से, कश्मीर के हवाले से। डॉक्टर साहब
लाइन कट गई,
आज हमारा ना टेलीफोन प्रॉब्लम है, कल इंशाल्लाह 12 बजे टेलीफोन चेंज हो जाएगा, और स्ट्रेसफुल डे रहा, बट यू नो व्हाट, स्ट्रेस किन को मिलती है, उन्हीं लोगों को मिलती है जो जीते होते हैं। जब हमारा ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया फिर तो सारी स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाएगी। तो स्ट्रेस तब तक ही है जब तक ये सांस की डोरी कायम है, सांस की डोरी टूटी तो स्ट्रेस मट्रेस गायब हो जाएगी। नो प्रॉब्लम लीजिए साहब, चाय पीना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। आराम से बैठिए, चाय की एक प्याली पीजिएगा, ये गरम गरम मशरूम। कहते हैं कि चाय पत्तों से तैयार की जाती है, और जो चाय चुनने वाली औरतें हैं ना, उनकी उंगलियां बड़ी बारीक होती हैं, बहुत। आपको पता है इस बात का? डू यू नो दिस?
यस।
उनकी उंगलियां, यानी जो चाय चुनने वाली औरतें हैं, खासतौर
पर हबड़ दबड़ हाथ नहीं होते,
हबड़ दबड़ हाथ नहीं होते, बहुत बारीक उंगलियां होती हैं उनकी। पूरी दुनिया में 3 दहाइयों यानी से ये है, और इसकी तरजीहात बदलती जा रही हैं, मगर चाय चाय है। ऊंटों के कारवानों से लेकर सियासी इनकलाबों तक चाय हमेशा इंसान का बाकायदा 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 साथी रही है। चाय लाजमा मलजूम है। चीन में 200 साल पहले चाय के इस्तेमाल के शवाहद मिले, यानी 200 years ago चाइना में चाय इस्तेमाल की जाती थी। मरकजी चीन के यांगलिंग के कदीम मकबरे में खुशक पत्तों जैसी, यानी मकबरे के अंदर खुशक पत्तों जैसी अशिया मिली हैं। पत्तों में कैफीन और थियानीन की मौजूदगी से पता चलता है कि दर हकीकत ये चाय की पत्ती के पत्ते थे। मरने वाले के साथ दफन कर दिए जाते थे ताकि मौत के बाद भी वो चाय पी सके। इस दरियाफ्त के बाद पहली मरतबा चाय के इस्तेमाल की तारीख मजीद 200 साल पीछे चली जाती है। और अब चाय की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, दार्जिलिंग चाय है, वो चाय है, वो चाय है, वो चाय। चाय की सारी की सारी किस्में एक ही पौधे की नोक से निकलती हैं, यानी तमाम दुनिया में चाय का जद अमजद जो है वो कैमिला सेनेंसिस का पौधा है। इस सदाबहार झाड़ी या छोटे दरख्त के पत्ते कलियां चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चाय को एक मजहबी मशरूब का नाम भी दिया जाता है। जापान में चाय 6वीं ईस्वी के आसपास चीन से वापस आने वाले जापानी मजहबी पेशवा और सफारतकार लाए थे। देखते देखते ये मजहबी बरादरी का पसंदीदा मशरूब बन गया। चीन के बुद्ध भक्षुओं ने 15वीं सदी में चाय की तकरीब मुतारिफ कराई, लेकिन जापानियों ने उसे अपनी एक बाकायदा रस्म बना दिया, जो कि बाद में नीम मजहबी और समाजी रिवायत बन गई। आपको पता है रशिया के जो कैरवान्स जब चला करते होते थे, और रशिया में ज़्यादातर चाय चाइना से आने वाले ऊँटों पर लाया करते थे, ये ऊँटों के कारवान महीनों सफ़र करते थे और चाय को एक जगह से दूसरी जगह लेके चलते थे। रातों को जो कैंपों के बाहर आग लगाई जाती है, धुआं जज़ब होता है। मास्को में ये सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचते तो चाय के पत्तों में धुएं का जायका आ जाता, जो इस चाय की खासियत था। आज भी रशियन कारवान चाय पीते हैं, यानी ये जो ऊँटों के कारवान जब ट्रैवल करते थे और दौरान सफ़र ये रात को कहीं पड़ाव डालते थे, आग जलाते थे, तो ये जब चाय को लेके जा रहे होते थे तो उस चाय के पत्तों में वो धुएं का असर शामिल हो जाया करता था। वो जायका आज भी इंजॉय किया जाता था। जब चाइना की इजारादारी टूटी ना 17वीं सदी में, 17th century में, चीन और बरतानवी राज के दरमियान सफारती और तजारती तल्लुकात टूटे थे। अब देखिए चाइना फिर वो सफारती तल्लुकात की जंग में अमेरिका से फंसा हुआ है। 17वीं सेंचुरी में चाइना और बरतानिया के दरमियान यही टसल शुरू हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आलमी तिजारत को कंट्रोल करती थी, स्कॉटलैंड के माहिर नबातात की खिदमात हासिल की, पूरी दुनिया में नायाब पौधे इकट्ठे किए और साहब जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उनको फरोख्त किया करते थे। उनको कहा गया कि वो चीन में खुफिया तौर पर जाएं और चाय के पौधे इंडिया स्मगल करें, ताकि एक मतवाजी सनत, क्योंकि चाइना की इजारादारी थी चाय के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप देखिए कहाँ कहाँ जरब लगाई। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को कहा, जो अशराफिया जो लोग उस जमाने में ट्रेवल कर सकते थे, कि आप लोग इंडिया का सफ़र करें और वहाँ से इंडिया से पौधे लेके आएँ और उनको चाइना से पौधे चाय के लेके आएँ और उनको इंडिया, ताकि चाइना की इजारादारी को चाय पे तोड़ा जा सके। खैर कहते हैं कि हैरत अंगेज के तौर पर 20,000 चाय के पौधे चाइना से इंडिया आए। ठीक है, दार्जिलिंग चाय जो है वो स्मगल करने में कामयाब हुए। पता चला कि इंडिया में तो ऑलरेडी चाय के पौधे थे, बहुत आत थी। बहरहाल कहते हैं कि इंडिया को चाय का घर बनाने में रॉबर्ट फॉर्च्यून की सरगर्मियों का बड़ा अमल है। अच्छा, अब चाय असल में जो पी जाती है ना, चाय काली चाय, एक्चुअल पत्ती में
कावा
पानी डाले, कावा, दैट इज द टी। मगर फिर चाय का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर इसको चीनी डालनी शुरू कर दी, फिर इसमें दूध डालना शुरू कर दिया, और अब तो जो चाय पी जाती है उसके बीच में लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या क्या डाल दिया।
नहीं, आजकल जो मशहूर तरीन चाय है वो हल्दी की चाय।
हल्दी की चाय इंग्लैंड में तो इसका बड़ा कारोबार है।
यहाँ पर,
अच्छा, कनाडा में भी शुरू हो गया,
बहुत जबरदस्त, जिधर कैफे लाटे वगैरह सारे।
एग्जैक्टली, इंडिया में उगने वाला जो चाय का पौधा है उसकी एक नस्ल आगे चली। आसाम चाय का जायका सबज चाय की बजाय काली चाय की शक्ल में ज्यादा बेहतर महसूस होता है। ऑक्सीडेशन या अम्ल तकसीद से पत्ते काले हो जाते हैं, यानी हवा की ऑक्सीजन जब इनको सुखाया जाता है तो उससे पत्ते काले हो जाते हैं, जो इसके फूलों जैसा जायका ख़त्म करके गाढ़ा तेज बना देते हैं। पहले ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाय जिसमें आसाम की चाय इस्तेमाल की जाती थी बड़ी तेज़ होती थी, दूध डालने की ज़रूरत पेश आई क्योंकि बहुत काली होती थी, डार्क होती थी, तो फिर लोगों को दूध डालने की ज़रूरत पेश आई। आजकल बर्तानिया में इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाय में दूध डाला जाता है, लेकिन इसके अलावा यूरोप के दूसरे हिस्सों में, यानी बाकी लोग काली कॉफ़ी भी पीते हैं, काली चाय भी पीते हैं। पहली मरतबा 1657 में चाय लंदन लाई गई। लोग इस बात पर परेशान थे कि चाय को पिया कैसे जाए। चाय उस जमाने में महंगी चीज़ कंसिडर की जाती थी, इसको हर कोई नहीं खरीद सकता था। अब तो चाय सस्ता तरीन मशरूब है। हर किसी को ये पता नहीं था कि चाय के पत्तों को पीना कैसे है। बहरहाल लोग क्या करते थे, इस 1657 की बात है, कि चाय के पत्तों को भिगो देते थे, या तो फिर इनको खाते थे, या मक्खन लगे टोस्ट पर रख के इन पत्तों को खाया जाता था। तुर्की दुनिया में सबसे बड़ी चाय की मंडियों में से एक है। तुर्की की काली चाय जरखेज़ ढिलवानों से आती है। ये बहिरा अस्वद के मशरकी साहिल पर वाक़िया है। टर्किश कॉफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन तुर्की में सबसे ज़्यादा मकबूल मशरूब चाय ही कंसिडर किया जाता है। आपको पता है 1773 में अमेरिका बॉस्टन शहर के रहायशी बरतानवी नौ आबादियाती दौर के खिलाफ उठ खड़े हुए, यानी एक क्या कहा जा सकता है, इनकलाब का समय पैदा हो गया। बॉस्टन टी पार्टी वजूद में आई, जिसने बरतानवी हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले चाय पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज भी किया। रात के अंधेरे में लोग क्या करते थे, कॉम्प्रेस बॉस्टन की बंदरगाह पर खड़े होकर तीन बरतानवी जहाज़ों पर उन्होंने हमला किया, चाय की 343 कंटेनर समुद्र में फेंक दिए। इस एहतजाज ने अमरीकी आज़ादी की जंग को एक कदम और नज़दीक कर दिया। बहरहाल चाय बेहतरीन मशरूब है, पीजिए और ज़रूर पीजिए, दैट्स इट।
पीजिए और ज़रूर पीजिए, मगर जो जहाँ से अभी आप आई हैं ना, वहाँ पर कहवा पिया जाता है, और कहवा जो है वो उसमें ना ही दूध होता है ना ही चीनी होती है, उसमें अगर बहुत कुछ डाल दिया उन्होंने,
थोड़ा सा पत्ती भी नहीं होती, बेशुमार इलायची होती है, मगर कहवे को खजूर के साथ पिया जाता है।
जो कड़वा वो ना, वो कहवा भी कई किस्म का होता है, जो कड़वा कहवा होता है ना, तो उसको जो है मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको जो है खजूर के साथ पिया जाता है।
बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया, आपको गीत पसंद आया, कौमी नगमा, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैंने आज ये गीत 3 से 4 के दरमियान सुना था, प्रैक्टिकली मेरी आंखें भर आई थी। ऑफकोर्स आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, मेरी बातचीत में, मेरी गुफ्तगू में मेरे उस्ताद झलकते हैं, मेरे माँ बाप झलकते हैं, मेरे दोस्त अहबाब झलकते हैं, कैसे उस मुल्क के एहसानात को मैं फरामोश कर सकती हूँ। खुदा करे कि मैं और आप एहसान जो कुछ भी हो, मगर एहसान फरामोश ना हो।
चलिए साहब, मट्टी वतन की मट्टी गवाह रहना, नैयर अनूर जी की आवाज में समाप्त फरमाइए। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
के शहीदों